आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। बड़ी खबर में विपक्ष विदेश प्रवक्ता सैमन बर्मिंघम का कहना है कि 7 मानवीय कर्मियों की हत्या के बाद इजरायली सरकार का 2 अफसरों को निकालने और 3 अन्य के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला उनकी जिम्मेदारी के भाव को दर्शाता है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ऑस्ट्रेलिया इजरायली सेना द्वारा गाजा पर किए गए उस हमले की जांच, जिसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कर्मियों की जान गई, में अपने एक विशेष सलाहकार को नियुक्त करेगा। इसी हमले में ऑस्ट्रेलिया की जोमी फ्रैंकम ने भी अपनी जान गंवा दी थी। श्री बर्मिंघम ने ये पूछे जाने पर कि क्या इजरायली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, श्री बर्मिंघम का कहना रहा कि इस कानूनी मामले पर टिप्पणी करने की ना ही उनकी काबिलियत है और ना ही उनके पास पर्याप्त जानकारी। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने पुष्टि की है कि बीते शुक्रवार को 15 शरणार्थियों के समूह से दूर हुए एक व्यक्ति को राज्य के उत्तरी दूरदराज के इलाके में खोज लिया गया है। एक नाव पर अवैध तरीके से आए इन लोगों के पकड़े जाने के बाद इस व्यक्ति की खोज जोर शोर से शुरू की गई थी। ऐसा बताया गया है कि बाकी 14 लोगों को आज सुबह एक प्लेन के जरिए नौरू भेज दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बीते 6 महीने में ये तीसरी अवैध नाव आई है। विपक्ष गृह प्रवक्ता जेम्स पैटरसन का कहना है कि एल्बनीजी सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने विपक्ष नेता पीटर डटन की परमाणु ऊर्जा योजना की निंदा की है। श्री डटन ने वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो ऊर्जा ग्रिड में 2030 के दशक के मध्य तक पहले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सुचारू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा श्री डटन ने कोयला समुदायों में निवासियों और व्यवसायों को यह भी आश्वासन दिया कि वे अगर न्यूक्लियर पावर अपनाते हैं तो उनको और सस्ते दामों पर बिजली दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी निजी उद्योग न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की इस योजना में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये योजना तार्किक ही नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में रिकॉर्ड तोड़ बरसात के बाद अब कई सिडनी समुदाय जलमग्न हैं। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में भीषण बारिश आने को है। वहीं सिडनी में रिचमंड से लेकर पिट टाउन के बीच हॉक्सबरी नदी के जलस्तर बढ़ने और बाढ़ आने की भी आशंका जताई गई है। बीती रात तक 107 इमरजेंसी चेतावनियां जारी थीं, 20 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं और अब भी 32 चेतावनियां लागू हैं। लेकिन न्यू साउथ वेल्स स्टेट इमरजेंसी कमिश्नर कार्लीन यॉर्क का कहना है कि अब सेवाएं रिकवरी की ओर केंद्रित हो रही हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये मांग बढ़ती जा रही है कि गाजा में मारे गए सभी मानवीय कर्मियों की एक स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कर्मियों की हुई मृत्यु के बाद इजरायली सेना ने अपने अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की है। इस हमले में ऑस्ट्रेलियाई कर्मी जोमी फ्रैंकम ने भी अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पुष्टि की है कि घटना के विस्तृत जांच में एक ऑस्ट्रेलियाई विशेष सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेश समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 6 महीनों से जारी इस संघर्ष में कम से कम 196 मानवीय कर्मी मारे जा चुके हैं और इनकी मृत्यु की जांच होनी ही चाहिए। यूनिसेफ प्रवक्ता टेस इंग्रम ने SBS न्यूज से कहा कि ये जांच जरूरी है। और अंत में खबरें भारत से। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वे उनके चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भारत ने इस आरोप का सिरे से खंडन किया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने विदेशी हस्तक्षेप पर जारी एक फेडरल जांच में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जो दर्शाते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने 2019 और 2021 के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए ये कहा कि दरअसल कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। कनाडियाई खुफिया एजेंसी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसके अनुसार 2021 में भारतीय सरकार ने उन चुनावी क्षेत्रों को लक्षित किया था जिनमें भारतीय मूल के वे मतदाता थे जो खालिस्तान समर्थक थे। इसी के साथ 7 अप्रैल 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।